मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। आज 6 मार्च 2020 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों कल हम लोग विदुर नीति की बात कर रहे थे और उसके तहत महाभारत के उद्योग पर्व में विदुर नीति का जो एक श्लोक शामिल किया गया है उसकी चर्चा मैंने आप सबसे की थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसा अक्षर नहीं होता जिसमें मंत्र की शक्ति न हो, कोई भी ऐसी जड़ नहीं होती जो औषधि न बन सके, कोई ऐसा पुरुष नहीं होता जिसमें कोई योग्यता न हो, बस जो जरूरत है वह इस बात की कि पारखी दुर्लभ हैं जो इन गुणों को पहचान कर इन्हें संयोजित करके इसका उपयोग कर सके। यहां देखिए उन्होंने कहा कि ऐसा कोई पुरुष नहीं होता, इसे आप विस्तार दे दीजिए कि कोई पुरुष और कोई महिला नहीं होती जिनमें की योग्यता न हो। आपको क्या लगता है? डेफिनेटली आप सबने इस पर विचार किया होगा। कल मैंने आप सबसे अनुरोध किया था कि आप सब इस पर विचार जरूर कीजिएगा। जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि पहले तो हमारी धारणा रहती है और हम किसी भी बात को जब सुनते हैं तो या तो तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं या तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं। और उसका कारण यह है कि हर चीज के बारे में हमारे दिमाग ने धारणाएं बना ली हैं। वो धारणाएं क्यों बनी है? समाज से बनी है, परंपराओं से बनी है, धर्म से बनी है, हमारी फिलॉसफी से बनी है, हमारे स्वार्थ से बनी है, वो एक अलग बात है। लेकिन जब हम उस पर विचार करने लगते हैं तो सही मायने में तब आप कह सकते हैं कि नहीं, ये मेरे विचार हैं। और मुझे यकीन है कि इस पर आप सबने जरूर विचार करके अपने अपने विचार स्थापित कर लिए होंगे। हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे भी प्रिय श्रोता हों जिन्होंने अपनी तरफ से इसकी व्याख्या भी की हो, समझने की कोशिश की हो कि ऐसा क्यों कहा गया है। तो आइए अब इसे थोड़ा सा हम एक एक को लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए पहला अक्षर है अमंत्रम अक्षरम नास्ति। इसके जरिए विदुर क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है, जिसे हम वर्ण भी कहते हैं, जिसमें मंत्र की शक्ति न हो। हमारे यहां एक शब्द है हमारे फिलॉसफी में नाद ब्रह्म, नाद ब्रह्म यानी कि जो ध्वनि है वह ध्वनि अपने आप में ब्रह्म है। बल्कि हमारे यहां तो मान्यता भी ऐसी है कि एक ध्वनि विस्फोट हुआ और उस ध्वनि विस्फोट के कारण इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो दोस्तों अगर ध्वनि से ब्रह्मांड का निर्माण हो सकता है तो आप कल्पना करके देखिए कि अक्षर से क्या नहीं हो सकता। देखिए जो ध्वनि होती है वो ध्वनि मूलतः क्या है? जो अक्षर है उसका उच्चारण ही एक प्रकार से ध्वनि है। हम क ख अ ए बी सी डी जो भी अक्षर है जब इनका उच्चारण करते हैं तो वही ध्वनि बनती है। और हमारे यहां जो सर्वोत्तम ध्वनि मानी गई है, जो सर्वोत्तम मंत्र भी है, जो सबसे अधिक शक्तिशाली है और जिसमें यह माना जाता है कि विश्व के निर्माण की शक्ति है, उसे कहा गया है ओम। ओम एक ध्वनि भी है और ओम एक अक्षर भी है, लेकिन यह एक ऐसा अक्षर है जिसमें 5 अक्षर शामिल हैं। खैर हम ओम के विश्लेषण पर यहां नहीं जाएंगे। तो हमारे यहां नाद को ब्रह्म कहा गया, यहां मैं उसे थोड़ा सा अप्लाई कर रहा हूं कि अक्षर को ब्रह्म कहा गया। और हमारे यहां अक्षर को ब्रह्म इस रूप में भी कहा गया है, देखिए कि जो कवि है, कवि को हमारे यहां ब्रह्मा की उपाधि दी गई है। जब मैं कवि की बात कह रहा हूं तो अब इसे आप थोड़ा सा विस्तार दे दें, क्योंकि देखिए जिस काल में ये बातें कही गई हैं उस समय हमारे पास केवल पोएट्री थी, काव्य शास्त्र था, है ना, हमारे पास गद्य शास्त्र नहीं था। आज हमारे पास गद्य शास्त्र भी है, तो आप पूरे के पूरे रचनाकारों को इसमें शामिल कर सकते हैं कि जो रचनाकार हैं वो ब्रह्मा के समतुल्य हैं। जब हम कहते हैं ब्रह्मा के समतुल्य हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ? ऐसा नहीं कि वो भगवान है या वो कोई जादूगर है, उनमें कोई बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है, नहीं। हमें इसे थोड़ा सा समझना होगा तभी हम अक्षर की जो मंत्र की शक्ति है उसे समझ सकेंगे। हमारे यहां मान्यता यह है कि ब्रह्मा ने किया क्या है, ब्रह्मा ने इस संसार की रचना की है, ये मान्यता है। की है नहीं की है आप उस बात पर मत जाइए, अभी आप सिर्फ इस धारणा को लेकर के चलें कि ये जो हमें जगत दिखाई दे रहा है, इस जगत का निर्माण ब्रह्मा ने किया है, इसका पोषण विष्णु कर रहे हैं और इसका संहार शिव करते हैं, ये मान्यता है। और ये प्रकृति का नियम ही है कि कोई चीज निर्मित होती है, इसके बाद फिर आगे बढ़ती है, परिवर्तित होती रहती है और अंत में नष्ट होकर के फिर से वो एक नई चीज बन जाती है। पदार्थ विज्ञान भी हमें यही कहता है। तो ये अक्षर क्या कैसे ब्रह्मा है, या कह लीजिए कि जो अक्षर की बुनावट कर रहे हैं, जो कवि हैं, वो कैसे ब्रह्मा है। देखिए, जब आप साहित्य पढ़ते हैं, चाहे आप पोएट्री पढ़िए, चाहे आप कहानी पढ़िए, चाहे आप उपन्यास पढ़िए, कोई भी शास्त्र की विधा पढ़िए, तो जब आप पढ़ते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके दिमाग में एक अलग तरह की दुनिया रचने बसने लगती है, अलग तरह की दुनिया। कभी आप इसे टेस्ट करके देखिएगा, जब आप पोएट्री पढ़ते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो क्या आपके दिमाग में कुछ और चीज नहीं आ जाती है जो पहले नहीं थी, या जो पहले है उसको किनारे करके एक नई चीज आ जाती है। ये नई चीज का आना ही एक नई दुनिया की रचना करना है, नई दुनिया की रचना करना। तो यहां इसीलिए कहा गया कि जो कवि है वो ब्रह्मा के समकक्ष हैं, क्योंकि उनके अक्षरों में इतनी ताकत होती है कि वो हमारे मानस पटल पर एक नई तरह की दुनिया के चित्र उकेर देते हैं। और ये कम बड़ी बात नहीं है। देखिए, एक तो हमारी दुनिया है ही जिसमें हम सब रह रहे हैं, जिसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन एक दूसरी दुनिया भी है जो इस पहली दुनिया से ज्यादा प्रबल है, ज्यादा शक्तिशाली है, और वह है हमारे दिमाग की दुनिया। वह दुनिया जिसकी रचना हमारा दिमाग करता है, वह दुनिया जिसमें हम अनुभूति करते हैं, वो दुनिया एक अलग दुनिया है। और वह दुनिया हमारी या तो कल्पना में है या हमारे भविष्य में है, जो भी है, तो जो कवि है वो इसकी रचना करता है। और कवि किसके माध्यम से रचना करता है? अक्षरों के माध्यम से रचना करता है। तो यहां आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से कवि का भी जो कर्म है वो एक तरीके से ब्रह्म के कर्म के समकक्ष है। चलिए, हम कवि की बात को यहां थोड़ी देर के लिए किनारे करते हैं और आप अपनी बात लीजिए। देखिए, आपकी जब भी कहीं किसी से कोई बातचीत होती रहती है, तो उस बातचीत के दौरान देखिए कि अगर मान लीजिए कि कोई एक उत्तेजित करने वाला शब्द कह देता है, या आपको अपमानित करने वाला कोई वाक्य या शब्द बोल देता है, तो क्या स्थिति होती है? अच्छे खासे बातचीत हो रही थी, लेकिन किसी ने उकसाने वाला कोई वाक्य बोल दिया, कोई शब्द बोल दिया, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? आप नहीं देखते, आप पाते हैं ना कि ऐसा लगता है जैसे कि कुछ गड़बड़ हो गया है और एकदम सारा का सारा वातावरण, बिल्कुल जो पहले बहुत अच्छा था, सुहाना वातावरण था, एकदम नरक में तब्दील हो जाता है। क्या से क्या हो जाता है, कितने बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। द्रौपदी ने एक ही तो वाक्य कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा होता है, ये कुछ शब्दों से बुना गया एक वाक्य है, अक्षर ही है इसमें। इस अक्षर की परिणति किसमें होती है, सोच करके देखो, उस महाभारत में होती है जिस 18 अक्षरीय सेनाओं से जो महाभारत लड़ा गया, उसमें मुश्किल से आखिरी में 18 लोग बचते हैं, इतना बड़ा विनाश हो गया। तो ये जो विनाश की जो शक्ति हुई वो कहां की शक्ति हुई? अक्षरों की शक्ति हुई। इसलिए अगर वो कह रहे हैं कि अक्षर मंत्र है, तो आपको दोनों तरफ से इसे लेना पड़ेगा कि यह मंत्र वरदान भी दे सकता है और मंत्र के जरिए आप किसी को अभिशाप भी दे सकते हैं, है ना। तो मंत्र का मतलब ये नहीं कि सारी चीजें पॉजिटिव पॉजिटिव ही है। तांत्रिक परंपरा वालों को जाकर के देखिए किस तरह से मंत्र से वो सारा गड़बड़ कर सकते हैं। तो मंत्र में क्रिएटिव पावर भी है और डिस्ट्रक्टिव पावर भी है। तो दोस्तों, आप सब जरा इस पर विचार कीजिएगा। 2 दिनों के बाद फिर मुलाकात होगी और फिर इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज शुक्रवार है, अब 2 दिनों के लिए आप सबसे अनुमति चाहूंगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए और मेरा अभिवादन भी। नमस्कार।